भक्तवृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बृजनाथ प्रभु और श्याम मोहिता माता जी के भक्ति वृक्ष के अंतर्गत भाग्यशाली जो उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी के हमारे लिए भक्ति के लिए जो एक मार्गदर्शन है, उसके अध्ययन के अंतर्गत जहाँ आज हम 9वें श्लोक का पाठ करेंगे। 8वें श्लोक में हमने पढ़ा के मन और वाणी को भगवान के चिंतन में, कृष्ण के चिंतन में लगाकर, स्मरण में लगाकर, और फिर ब्रज में वास करना चाहिए। और ब्रजवासी जो भगवान के रागात्मिक भक्त है, उनके अनुसरण होकर उनके निर्देश में वहाँ भजन करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रज तो बहुत बड़ा है, 84 कोस में है, तो उधर भजन करने के लिए कौन सा स्थान जो है उसको चुनना चाहिए। तो ये 9वां श्लोक वो जो भजन प्रणाली ब्रज में करनी है उसके लिए स्तर एक से एक अधिक प्रिय स्तर भजन के लिए उचित कौन सा है, उसके अंतर्गत आज का 9वां श्लोक है। और ये स्तर कब होना चाहिए? जब इस जगह पे जाके भजन कम करना चाहिए, जब प्राप्ति दशा हमने देखा था, वस्तु सिद्धि दशा, जब अपने स्वरूप में आ जाए, इसका मतलब भाव भक्ति को, भाव के स्तर पे जो भक्त है वो यहाँ रहेगा तो उसको लाभ होगा। तो आइए ये श्लोक 9वां पढ़ते हैं। वैकुंठ जनितो वर मधो पुरी तत्रापिरासोत्सवात् वृंदावरण्या उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहापि गोकुलपति प्रेमामृता पलावना कुर्याद अस्या विराजितो गिरितटे सेवाम विवेकी नकः। ये इस श्लोक का जो है वो दूसरा है मीटर। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरी। वैकुंठ ये आध्यात्मिक जगत जो 3/4 है और 1/4 भौतिक जगत है, जिसमें हमारा ये एक लोक जिसमें हम रह रहे हैं ये तो एक राई के दाने के बराबर है। ऐसे ऐसे अनंत कोटि लोक हैं, वो सब मिला के 1/4 होगा, और जो 3/4 आध्यात्मिक जगत है उसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। तो उस वो वैकुंठ है, वैकुंठ जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत है। जनितो वरा मधुपुरी, उससे वरा, वरा का मतलब वरिष्ठ श्रेष्ठ उत्तम। क्या है? मधुपुरी मथुरा। क्यों? क्यों जनितो, भगवान ने वहां जन्म लिया, कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए वैकुंठ से वो महान है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का जन्म तो होता ही नहीं। वहां न भगवान का माता है, न पिता है, न कोई बाल लीला है। तो ये मधुर रस तो मथुरा में है, वैकुंठ में है नहीं। तत्रापि उससे भी ऊपर रास उत्सवाद, जहां भगवान ने रास लीला की बंसी बट पे, जमुना के तट पे, कहां किया? वृंदावरण्यम। वृंदावन उससे महान है, किससे? मथुरा से। वो स्थान मथुरा से अति उत्तम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो सर्व मनोरम अति उत्कृष्ट लीला है, रास लीला, वो वहां हुई। उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, ये जो रस उत्सवाद वृंदावन के साथ है, उदार पाणी रमणात्, उदार पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, रासलीला भगवान ने वहां की, और उदार पाणी भगवान का एक नाम है, उदार पाणी भगवान श्री कृष्ण किसके साथ कहाँ ऐसा अद्भुत लीलाएं की। वैसे पाणी हाथ को भी कहते हैं जिसके ऊपर गोवर्धन को धारण किया। तो ये वृंदावन से महान कौन है? तत्रापि गोवर्धन, उससे महान है गोवर्धन। क्यों? भगवान ने कर कमल के ऊपर धारण किया और वहां वहां भी भगवान की रास विहार होता है और ग्वाल वालों के संग में गौचारण होता है और वो विशेष है। और उससे भी आगे राधा कुंडम इहापि गोकुलपते, गोकुलपति श्री कृष्ण प्रेम अमृत, वो प्रेम के अमृत का कुंड है राधा कुंड, वो सबसे श्रेष्ठ है। कुर्यादस्य विराजतो, इन स्थानों के ऊपर कौन नहीं रहेगा। गिरी तटे, गोवर्धन के तलहटी में विवेकी न कहा, जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, जिसको थोड़ा सा अकल है, वो कौन नहीं रहेगा यहाँ, उसको तो यहीं रहना चाहिए। से वहां क्या करे, सेवा करे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो यहां नहीं रहेगा और सेवा करेगा। तो ये है भजन स्थली, जहां भजन करना है उसके लिए कौन सा स्थान उच्चतर है और उसमें क्या विशेषता है। तो मथुरा जो एक बहुत पुण्य भूमि है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से महान है। और वैकुंठ से महान क्यों है, आध्यात्मिक जगत से महान क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहां अवतार लिया, प्रकट हुए, उनका जन्म भूमि है। और मथुरापुरी से महान है वृंदावन, वृंदावन का वन विशेष रूप से इसलिए महान है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां महाराज किया। उस वृंदावन से भी महान है गोवर्धन पर्वत। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने कर कमल के ऊपर धारण किया, और केवल इतना नहीं, रमणियों के साथ, रमणी का मतलब गोपियों के साथ भगवान ने बहुत प्रेम के लीलाएं गोवर्धन में की। और गोवर्धन में बहुत रास मंडल है और गौचारण सखाओं के साथ विशेष रूप से किया है। और उससे भी ऊपर, गोवर्धन से भी महान है और परम उत्तम है, सबसे महान है, वो है राधा कुंड। वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो अमृत से परिपूर्ण और छलक रहा है। किसका अमृत? गोकुलपति का अमृत, कृष्ण का अमृत, राधा कृष्ण के प्रेम का वो कुंड है। फिर बताइए कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो राधा कुंड के ऊपर नहीं रहेगा, जो गोवर्धन की तलहटी में और गोवर्धन के आंख के रूप में है, तो वहां कौन नहीं रहेगा। तो ये भजन कहाँ करना चाहिए, ब्रज के अंदर रागनों का मार्ग से, उसके लिए स्थानों का वर्णन किया गया है। प्रायः इन सारे स्थानों पे, वृंदावन में भजन कुटीर है रूप गोस्वामी, स्वयं भजन रूप गोस्वामी की राधा दामोदर मंदिर में भजन कुटीर है, तो वो वहां रहे। गोवर्धन में वो रहे, राधा कुंड में उन सबका, इन सब हमारे आचार्यों का भजन स्थली राधा कुंड में है। रघुनाथ दास का तो भजन कुटीर, कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, इन सब का भजन कुटीर राधा कुंड में। यहाँ तक के हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी भजन कुट करने के लिए राधा कुंड में आके रहे थे, उनका घर अभी आज उधर है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज राधा कुंड में आए थे। तो कुछ ये राधा कुंड में कौन नहीं रहेगा, ये विशेष बात है। और सब जगह पे, अन्य स्थान पे, ब्रज के अंदर वो नंदगांव के पास टेर कदम में रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है, सनातन गोस्वामी नंदगांव में भजन कुटीर है, गोकुल में भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी की, गोवर्धन में मानसी गंगा के किनारे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है, जहाँ चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये सब स्थानों पे हमारे आचार्य रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन को ही अपना केंद्र बनाया। और इसने कहा, प्रभुपाद का कहना था कि राधा कुंड में जाने के लिए हमारे भक्तों में जब योग्यता आएगी तब जाके वहाँ बैठेंगे, लेकिन अब वृंदावन हमारे लिए, और वो भी रमण रेती जहाँ भगवान ने गौचारण किया है, उस स्थान को चुना प्रभुपाद जी ने। तो अब हम तात्पर्य के भाव को देखते हैं। आध्यात्मिक जगत तीन चौथाई है सारी सृष्टि का। असल में यहां एक शब्द सृष्टि है वो उचित शब्द नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की सृष्टि नहीं होती, वो नित्य है। भौतिक जगत वन चौथाई जो है, एक बटा चार जो हमारा भौतिक जगत है उसकी सृष्टि होती है, संहार होता है। अध्यात्म जगत नित्य है कहने के लिए ऐसे कहते हैं, लेकिन उसकी सृष्टि कभी नहीं होती है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से तो उत्तम है ही, क्योंकि न जन्म है न मृत्यु है, न जरा है न व्याधि है, न वहां सृष्टि होती है न प्रलय होती है, इसलिए महान है। और भौतिक जगत में है तो ये सब दुखदाय है, इसलिए वो इससे उत्तम है। परंतु मथुरा और उसके चारों ओर के जो क्षेत्र है, देखा जाए तो मथुरा के चारों ओर का क्षेत्र ऐसे लिखा है, भले भौतिक जगत में है परंतु वो वैकुंठ से, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से महान है, क्योंकि भगवान ने मथुरा में प्रकट होने के लिए इस स्थान को चुना। और यहां से जो मथुरा से अंदर में 13 किलोमीटर अंदर वृंदावन जो है, 12 वनों में एक वन है जमुना जी के तट पे, वो ये जमुना जी के पूर्व तट के वन है, शायद पूर्व के पश्चिम तट के 5 वन है इस तरफ, तो वृंदावन है वो मथुरा से महान है। क्यों? क्योंकि क्योंकि 12 वन है, 12 वन है, ये 12 वन कोई एक वृंदावन में नहीं है, ये 12 ही वनों की बात कर रही की जा रही है, जो 12 वन ब्रज में है, जमुना के एक किनारे पे 5, दूसरे किनारे पे 7 वन। तो यहां 12 वन है, और प्रभुपाद ने उनके संक्षेप में नाम लिखे हैं, ताल वन, मधुवन, बहुला वन। ये तो ताल, मधु और बहुला, ये ताल वन तो हमारे मथुरा से जयपुर जाते हुए जिस रास्ते में सीधे हाथ पे अंदर में है, और मधुवन तो मथुरा से 2 किलोमीटर दूर हाईवे से अंदर में है, ये तो दो नर्सरी के, और बहुला वन है, इसमें आप लोग कभी गए नहीं होंगे प्रायः, यहाँ बहुला गाय और बहुला गोपी का गांव है, और ये राधा कुंड जाते हुए वृंदावन से बीच में 2-1 किलोमीटर लेफ्ट साइड में अंदर जाना पड़ेगा, उबाती गाँव में शायद इसका नया नाम है अभी, जो आज आधुनिक नाम है, वहाँ बहुला वन है, संकृष्ण कुंड आदि है, बहुत सुंदर स्थान है। क्योंकि भगवान ने यहाँ बहुत लीलाएं की, तो वृंदावन के साथ प्रभुपाद जी ने 12 वनों का वर्णन साथ में, वृंदावन में 12 वनों को गिन लिया, इसलिए मथुरा से वृंदावन महान है। परंतु उससे इन वनों से महान गोवर्धन है। क्यों गोवर्धन है? क्योंकि भगवान ने इसको छाता की तरह 7 दिन के लिए धारण किया, अपने वाम भुजा के अगर भाग के ऊपर, वो एक छोटी उंगली, कनिष्ठ उंगली के ऊपर, अपने कर कमल से भगवान ने इसको धारण किया, कब धारण किया प्रभुपाद ने हमको बता रहे हैं यहां जानकारी के लिए, जब इंद्र का यज्ञ कृष्ण ने बंद कराया और इंद्र क्रोधित हो गए और वर्षा करके ब्रज को और गायों को डुबाना, ब्रजवासी को डुबाना चाहा, तो भगवान ने इसको धारण किया। और इतना ही नहीं, इस गोवर्धन की तलहटी में इसके यहां कृष्ण गायों को चराते हैं ग्वाल वालों के संग में, और साथ साथ में गोपियों के संग में, राधा और अन्य सखियों के संग में यहां भी बहुत ज्यादा रास विहार आदि लीलाएं होती हैं। वृंदावन में जो रास लीला होती है ना, उसको कहते हैं पंचायती रास लीला। उसमें सब गोपियां भाग ले सकती हैं, सुपक्षीय गोपियां, विपक्ष गोपियां, तटस्थ गोपियां, और राधा रानी के जो है अनुयायी गोपियां, थोड़े चंद्रावली की, सब ले सकती हैं। इसलिए राधा रानी उस रास में असंतुष्ट हो जाती हैं कि सब कैसे सजे सकती हैं, इसलिए राजा रानी उस राज से अदृश्य हो जाती है, भगवान उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन गोवर्धन की तलहटी पे जो रास होती है या राधा का मिलन होता है, वहां केवल सुपक्षीय गोपियां आ सकती हैं, वहां विपक्षीय गोपियों का आना भी होता है तो उसको हटाया दिया जाता है, वहां रहती नहीं है वो। तो वो इसलिए विशेष है कि भगवान के सुपक्षीय गोपियों के साथ भगवान के विहार का स्थान है, परंतु वहां ग्वाल बाल जाते हैं, गैया चराने जाते हैं, तो इसलिए उससे भी महान है राधा कुंड जो गोवर्धन की तलहटी में है। यह राधा कुंड गोवर्धन से भी महान है। क्यों महान है? वहां कृष्ण का प्रेम, उस वहां क्या लिखा है, कृष्ण का प्रेम दी लव ऑफ कृष्ण ओवरफ्लोज, कृष्ण का प्रेम वहां क्या लिखा है शब्द,
कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है।
उफनता तो थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, लिख दिया है तो लिख दिया है,
जहाँ कृष्ण का प्रेम उफनता है, क्योंकि यह स्थान कृष्ण तथा राधा के पारंपरिक नित्य प्रेम व्यापार की स्मृतियां प्रति विलास का स्थल है।
वो तो इसको देखते हैं अपन शब्दों को, लेकिन यहाँ जो उफनता है थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं है, मतलब इतना भद्र शब्द नहीं है उफनता। जहां कृष्ण का प्रेम उफनता शब्द जो है, लिख तो दिया है ओवरफ्लो, लेकिन इसका अर्थ ये भाव नहीं है। कृष्ण का जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रेम जो है, उन्होंने श्रीवास आंगन में जो है लूटा, ऐसे ये राधा कृष्ण के प्रेम का रति विनाश का बहुत, प्रभुपाद ने ये शब्द लिखे हैं, इसको ध्यान दिए, इसको हम पढ़ेंगे अन्य स्थानों से, क्योंकि इस स्थान के ऊपर सुमृतियां हैं। सुमृतियां किसकी हैं? राधा कृष्ण के रति विलास। रति विलास का मतलब दोपहर के समय राधा कुंड पे राधा रानी आती है, कृष्ण से मिलती है, नौका विहार करते हैं, जल विहार करते हैं, ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं, उनकी स्मृतियां किसकी हैं? ये लाइन भी ध्यान से हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे। अब क्यों है राधा कुंड इतना महान, रूप गोस्वामी ने इसको महत्व क्यों दिया है? अब इसके लिए लिखा जा रहा है श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमोहिनी में आए तो असल में आए ही राधा कुंड को खोजने के लिए। बाकी सारी लीला स्थलियों को, अन्य लीला स्थलियां जो है गोस्वामियों के द्वारा जो है खोजी गई, परंतु ये राधा कुंड किसी गोस्वामी ने नहीं खोजा, साक्षात गौरंग महाप्रभु राधा भाव में श्री कृष्ण इसी को ढूंढने के लिए विशेष रूप से आए, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु केवल राधा कुंड को ही प्रकट करने के लिए आए, और उनको जब मिल गया तब ये छोटा सा एक गोरी और काली कहते हैं शाम और गोरी कुंड के रूप में एक कीचड़ का खेत के बीच में, चावल के खेत के बीच में खड्डे थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया, उसी खड्डे में स्नान किया, और उसी वक्त में उसकी जो काली मिट्टी थी उसका तिलक लगाया, इसलिए आज तक अभी भी लोग राधा कुंड के अंदर से निकली हुई काली मिट्टी का कुछ लोग तिलक लगाते हैं जो वहां रहते हैं। तो महाप्रभु ने उस दिन उस मिट्टी का तिलक लगाया था जब स्नान किया, ऐसे कहा जाता है। और फिर उन्होंने बताया अपने भक्तों को कि ये राधा कुंड है, ये स्थान है जहां राधा कुंड था, और फिर उस राधा कुंड का नया निर्माण और विस्तार किया गया। हम जाते हैं, जानते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने विशेष रूप से इसका विस्तार किया, और भगवान बद्री नारायण ने, बद्री विशाल ने बद्रीनाथ धाम से किसी दान देने वाले सेवा भेंट लाए हुए भक्त को प्रेरणा दी कि जाओ दास गोस्वामी के पास ये धन दो, क्योंकि वो राधा कुंड का निर्माण करना चाहता है। तो ऐसे राधा कुंड का निर्माण जो है वो बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने उनको निर्माण किया। छह गोस्वामी सबने वहां किया, परंतु रूप रघुनाथ अभी तो बहुत सुंदर राधा कुंड वहां है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी इनको प्रकट करने की। तो फिर राधा कुंड को छोड़ के और जगह पे कोई क्यों रहेगा? जिसको दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, वो राधा कुंड के महत्व को जानेगा। अब प्रभुपाद जी बहुत दूसरी बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, और भी चार वैष्णव संप्रदाय है, और चार संप्रदायों में भी निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना है, रामानुज संप्रदाय में प्राय रामन राधा सीताराम की उपासना है, और मध्व संप्रदाय में केवल कृष्ण की उपासना है, जो गोपाल कृष्ण मंथनी हाथ में लिया हुआ है, और वल्लभ संप्रदाय में भी बाल गोपाल की उपासना है, गोवर्धन नाथ की उपासना है प्राय, निम्बार्क में राधा कृष्ण की उपासना है। फिर भी इतनी सारी वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से किसी का भी राधा कुंड में इतना ज्यादा अतिशय रुचि नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकते, चैतन्य महाप्रभु के भाव की भक्ति को नहीं समझ सकते हैं, उनके लिए राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व का इतना ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। इसलिए राधा कुंड का सेवन केवल गौड़ीय वैष्णव ही विशेष रूप से करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। अब हमारे स्लाइड को भी देखें, हम आप अगर नोट करें तो ये बात कह दें, आध्यात्मिक भजन प्रणाली के स्तरों का यहां नीचे से वैकुंठ सबसे नीचे है, और तीन चौथाई है धरती का, अपना आध्यात्मिक जगत का, जो भौतिक जगत से ऊपर है। उससे ऊपर मथुरा क्यों है? क्योंकि भगवान ने वहां जन्म लिया, भले ये भौतिक जगत में है फिर भी ये महान है, आध्यात्मिक जगत से महान है, भौतिक जगत में होते हुए। वृंदावन क्यों महान है? 12 वन है और भगवान ने वहां बहुत प्रेम के रास विहार आदि किया है। गोवर्धन के लिए तीन बातें लिखी है, क्योंकि कृष्ण ने उनके कर कमल के ऊपर धारण किया, भगवान ग्वाल बालों के संग वहां गौचारण लीला किया, और राधा और सखियों के साथ भगवान के बहुत रास विहार का वहां कार्य है। और राधा कुंड के लिए हैं पांच बातें, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम यहां ओत प्रोत चारों ओर से बरस रहा है, और यहां राधा कृष्ण के रास विलास की बहुत सी स्मृतियां हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष इसी को प्रकट करने के लिए आए, और ये गौड़ीय विष्णु को बहुत प्रिय है, और इसके महत्व को अन्य वैष्णव संप्रदाय नहीं जान पाते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति मार्ग को नहीं जाते हैं। गोरा न होता तो चैतन्य महाप्रभु होता, राधा र महिमा प्रेम सीमा, राधा और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है, कैसे लोग जानते? तो ये जो बात है ये है विशेष एक बात। अब हमारे पास यहां क्या लिखा है इसको देख लेते हैं, फिर कुछ और बातें थोड़ी और इसके रहस्य को देखते हैं। यहां हमारे पास जो लिखा है ये लिखा है प्रेम अमृत, ये जो शब्द है श्लोक में, उस शब्द को यहां लेकर और उसके भाव के अंतर्गत यहां हमारे को यहां अच्छा ये हिंदी वाला है, मैं एक मिनट, आपका इंग्लिश वाला खुला कि नहीं खुला?
प्रभु पता नहीं, अभी भूषण नितिन बहुत थोड़ा दिवाली वाला के चक्कर में बिजी हो गए थे, तो फिर वो बोलते मैं देखता हूँ माताजी।
अच्छा, तो पहले तो ये है कि नौवां और दसवां श्लोक, ये जो नौ और दस श्लोक है ना, इसको कहते हैं भगवान, इन दो श्लोकों में भक्तों की महानता, एक भक्त एक यानी जो जो साधन वाले हैं उनमें से महान एक से दूसरा कौन है, और भजन की स्त्री में एक से दूसरी महान कौन है। अंग्रेजी में कहते हैं हायरार्की की महानता, एक स्तर से दूसरे स्तर की महानता है। और 11वां श्लोक जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड वाली, वो बात आएगी। अब ये श्लोक हमने पढ़ लिया, यहां लिखा है प्रेमा अमृत पल्वनाथ, उसका मतलब जहां श्री कृष्ण का प्रेम वहां जो है अति अतिशय प्रेम के कारण चारों ओर बिखर रहा है, प्रेम वहां प्रेम ही प्रेम है, तो ये है राधा कुंड। और यहां क्या है, कृष्ण के प्रेम पवित्र प्रेम जागृत होता है। हमारे पास क्या लिखा है, कृष्ण के प्रेम उफानता रहता है, राधा कृष्ण के रति विलास की अनेक स्मृतियों का स्थल है, अनेक स्मृतियों का, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो आप लिखेंगे, वो नीचे एरो देखिए, नीचे से भौतिक जगत, उससे ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर मथुरा। मथुरा क्यों, वैकुंठ कितना है, एक भौतिक जगत कितना है, एक चौथाई, वैकुंठ कितना है, तीन चौथाई। अब वहां वैकुंठ में क्या नहीं है, हमने आपको बताया, भगवान का जन्म नहीं होता, माता पिता नहीं होता है, वहां ये लीलाएं नहीं होती है, इससे वृंदावन उससे महान है। क्यों, और भी रस की दृष्टि से इनका हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, रस की दृष्टि से भी एक दूसरे से कैसे ये महान है, रस हम जानते हैं 12 रस, उसका वर्णन देखेंगे। अब वृंदावन क्यों महान है, क्योंकि भगवान ने वहां रास लीला की और वहां 12 वन है। और उदार पानी रमणात, उदार पानी रमणात ये गोवर्धन के लिए है, भगवान ने जिसको अपने कर कमल के धारण किया खेल खेल में, तो वहां विशेष बातें जो है 3 है। और राधा कुंड की हमने आपको 5 बताई, यहां 1 लिखी हुई है। अब इसके बाद 12 रस आप सबने पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं 12 रस, 12 रस हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़े हैं,
डायरेक्टर ऑफ डिवोशन में।
हाँ, तो ये 12 रसों की दृष्टि से क्या इनमें अंतर है, ये आपको बताते हैं। वैकुंठ में 2.5 रस होते हैं केवल, 2.5 रस वैकुंठ में है भक्ति के, और वो भी सब ऐश्वर्य वाले रस हैं, कोई माधुर्य का रस नहीं है, ऐश्वर्य, जहां भगवान की महिमा को सब जानते हैं। उसमें एक शांत रस है, एक दास्य रस है, और आधा कभी कभी गौरव सखा रस होता है। आधा गौरव सखा का मतलब भले मित्र है लेकिन भगवान को बड़ा समझ के हाथ जोड़ के खड़ा होता है। मथुरा में 5वां रस, 5वां रस हैं, शांत दास्य वात्सल्य, शांत शांत दास्य सखा वात्सल्य और माधुर्य, परंतु हैं सारे ऐश्वर्य युक्त, वहां भगवान की महिमा सब जानते हैं, ऐश्वर्य युक्त हैं। वृंदावन में 5वां रस हैं लेकिन माधुर्य हैं, इसलिए महान है। वहां ऐश्वर्य का किसी को पता नहीं है भगवान के, वो तो अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना मित्र, अपना स्वामी, अपना प्रेमी ऐसे मानते। गोवर्धन में 2 प्रकार की के विशेष माधुर्य रस हैं, कौन से बताए, सखा रस और माधुर्य रस, 2, राधा कृष्ण के विहार और सखाओं के साथ गोचारण। और ये सखा कौन से, विश्रम्ब सख्य, मतलब भगवान और सखाओं में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ेंगे, कोई ऐश्वर्य की बात नहीं है। केवल भगवान का जो नैमित्तिक पास एक लीला है, नैमित्तिक का मतलब ये एक लीला गोवर्धन की जो है ये नैमित्तिक लीला है, उसमें 5 रस हैं, क्योंकि सब आए, सब उसके नीचे खड़े थे उस वक्त। उस वक्त तो माता पिता भी थे, सखा भी थे, सेवक भी थे, मित्र भी थे, उसको छोड़कर, गोवर्धन धारण के 7 दिनों को छोड़कर गोवर्धन में 2 ही माधुर्य रस विशेष है, एक सखा रस गौचारण का और एक माधुर्य रस गोपियों के भी विशेष पक्ष, राधा के पक्ष के गोपियों के साथ विशेष रूप से। चंद्रावली आएगी तो भी उसकी उसको ले जाके सखी स्थली छोड़ के आ जाएंगे, जो गोवर्धन के थोड़ी आगे दूसरी तरफ है। अब राधा कुंड में एक ही माधुर्य रस है, बस एक माधुर्य, केवल सुपक्षीय गोपियां राधा और उसकी अष्ट सखियां, और जो सखा भी है उन्होंने भी अपने कुंज गोपियों को दे दी है। और ऐसे सुबल और मधुमंगल आदि ऐसे सखा हैं जो गोपियों और कृष्ण के बीच में आदान आना जाना का बात करते हैं, लेकिन है एक ही केवल माधुर्य रस है, वह केवल माधुर्य रस है जो उज्जवल रस है सबसे। तो रस की दृष्टि से ये एक दूसरे से ऊपर क्या है। अब आपसे थोड़ा सा इसकी परीक्षा, जैसे पढ़ा हमने पूरा भी है, तो ये पूछा जाए, मथुरा आध्यात्मिक दृष्टि से महान है क्योंकि ये भौतिक जगत है, मथुरा आध्यात्मिक जगत से किससे महान है, भौतिक जगत से, वृंदावन से, वैकुंठ से, या सबसे? वैकुंठ से महान है। वृंदावन मथुरा से महान है क्योंकि बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें 12 वन है और बड़े बड़े महान भक्त वहां रहते हैं, या सब 12 वन है? हाँ, 12 वन थे ना इसमें, 12 वन है प्रभुपाद। और गोवर्धन वृंदावन से मुख्य इसलिए है कि कृष्ण ने इसको उठाया, कृष्ण यहाँ गैया चराता है ग्वालों के साथ, और कृष्ण के राधा के साथ बहुत, राधा रानी और गोपियों के साथ बहुत प्रेम लीला का यहाँ है। तो ये, और फिर सब है यहाँ, ये सब इसमें क्या उत्तर है? गोवर्धन क्यों महान है? कृष्ण ने धारण किया, गोपियों के साथ गैया चरा, ग्वालों के साथ, तीनों है। राधा कुंड सबसे महान है क्योंकि महान डिवोटी, महान भक्त वहां रहते हैं, जहां कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। हा? और राधा कृष्ण के बहुत ही प्रेम लीलाओं का स्थल है, और दूसरे वैष्णव संप्रदाय इसके विषय में नहीं जानते हैं।
प्रभु चारों ही है।
वैसे विशेष रूप से एक ही लिखा है हमारे ऊपर, देखिए हमने पढ़ा था ना, कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है,
लेकिन आपने चारों बताए थे प्रभु, लेकिन
है चारों, लेकिन फिर भी इसमें मुख्य वो है। राधा कुंड की पूजा कौन करता है? जो महान उत्तम भक्त है, जिनको आध्यात्मिक बुद्धि है, गौरिया वैष्णव चेतना महाप्रभु के अनुयायी है, या कोई भी नहीं? हाँ, गौरिया वैष्णव ही विशेष रूप से करते हैं। अब एक लाइन हमने आपको जो कहा था, प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है, एक बहुत गंभीर बात लिखी है। क्या गंभीर बात लिखी है? नवें श्लोक में उन्नत वैष्णव राधा कुंड पे रहना चाहते हैं क्योंकि वहां बहुत स्मृतियां हैं राधा कृष्ण के रति विलास की। इसका अर्थ क्या, किसकी स्मृतियां हैं? प्रभुपाद ने ऐसे क्यों कहा? कैसी, कौन सी ऐसी स्मृतियां हैं? ऐसे भी भगवान कह सकते हैं राधा कृष्ण के रति विलास की जगह, इतना भी कह सकते थे, स्मृतियां क्यों लिखी है? तो उसको थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो श्री प्रभुपाद यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि गौरी वैष्णव जो वहां रहे और अभी भी रह रहे हैं, नित्य उनका वहां निवास है राधा कुंड पे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और इनके जो स्मृतियां हैं, जैसे उन्होंने स्थावली लिखी है, गोपाल चंपू लिखा है, गोविंद लीला अमृत लिखा है, कृष्ण भावना अमृत लिखे हैं, ये इनके जो पुस्तक हैं जिनमें इन्होंने उन सारे लीलाओं का वर्णन किया है, ये प्रभुपाद जी का भाव है इसकी गहराई में। और आठवें श्लोक में कहा कि ऐसे भक्तों के अनुयायी बनना चाहिए जो ब्रज के हैं, तो ऐसे भक्तों के अनुयायी रहना चाहिए, ये सब आज अभी भी वहां निवास करते हैं, इनका नित्य निवास है। तो हम समझते हैं कि ये भक्त, ये सब महान भक्त वहां रहते हैं, इनके सारे पुस्तक जिनमें इन लीलाओं का वर्णन है वो विशेष रूप से बताया गया है। और भी गहराई जो आपको पुस्तक बताया उसमें बहुत गहरी बातें और लिखी है। यहाँ 12 वनों के नाम अगर आपको याद हैं तो हम बताते हैं, अंग्रेजी वाले आप में दिए हुए हैं। ये 4 वन हैं बलराम जी के। भांडीर वन, ये जमुना जी के वृंदावन के दूसरे तरफ है। जमुना क्रॉस करके जाएंगे वृंदावन से तो उसको कहना चाहिए जमुना का पूर्व तट। भांडीर वन जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, एक वहाँ वेणुकूप है जो भगवान ने बनाया था वत्सासुर को मारने के बाद। और बहुला वन, बहुला वन अभी आपको बताया, जहाँ बहुला गाय और बहुला गोपी रहती है। और भद्र वन, वो बलभद्र का वहाँ मंदिर भी है। और बिल्व वन, ये बेल वन के नाम से है जहाँ लक्ष्मी आज भी तपस्या कर रही है। और कृष्ण के मुख्य जो वन है, जहाँ कृष्ण के, क्योंकि अपने सखाओं के साथ गैया चराते हैं, तो कृष्ण के मुख्य वनों का है कुमोद वन, काम्य वन और खदीर वन। ये खदीर वन, काम्य वन तो सबको मालूम है, बहुत बड़ा वन है, बहुत कृष्ण की वहाँ बाल लीलाएं हैं विशेष रूप से। और काम्य वन हो गया, कुमुद वन एक छोटा सा है जहाँ कुमुद सरोवर है और कमल के फूल हैं, वो कमल कमल जहाँ उगता है। और खदीर वन ये है जहाँ, खदीर वन जहाँ भगवान ने बकासुर को मारा था, खायोरे खायोरे कहा तो उसका नाम खैरा हो गया क्योंकि भगवान उसकी चूंच में चले गए थे। और यहाँ लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर है और उनके पास नरोत्तम दास यहाँ आया करते थे। और यहाँ एक बहुत सुंदर कुंड भी है। और जो वन है वो है महावन। ये जो महावन है ये गोकुल कहलाता है जहाँ कृष्ण के बाल लीलाएं हैं। और एक है मधुवन और वृंदावन, तालवन लोहावन, तालवन लोहावन। तो ये सारे वन 12 वन ऐसे हैं। और 12 रस आपको मालूम है सारे, तो ये 12 वन है इनका वर्णन किया हुआ है। और इन 12 वनों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं ये 12 रस भगवान के इन वनों के अंदर है। ये 12 रस भी इन वनों में है। चैतन्य महाप्रभु और राधा कुंड के विषय में विशेष बातें इसके बाद का है मेरे ख्याल में, आप देखें इसके बाद वाला जो है राधा कुंड और महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को विशेष रूप से ढूंढ के निकाला। चैतन्य महाप्रभु के भक्त विषय रूप रघुनाथ, रूप रघुनाथ ने इसको पुनः प्रकट किया। राधा कुंड के ऊपर रूप गोस्वामी ने बहुत ज्यादा बल दिया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी इसको प्रकट करने की। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव इसकी पूजा का यहाँ रहते हैं और इसकी सेवा करते हैं, ये विशेषता है। और यह हमारा ये श्लोक पूर्णावती पे पहुंचता है। अब हमारा आज का समय भी पूर्णावती, हम आगे वाले श्लोक को पढ़ लेते हैं और कल फिर दोनों श्लोक पूरा कर लेंगे कृष्ण की कृपा से। ओके, इसको मैं कहां से पढ़ूं, ये श्लोक को पढ़ लेते हैं। कर्मी व्यपरितो हरि प्रत्यया व्यक्तिम ययो ज्ञानिनस् तेभ्यो ज्ञान मुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठ ततः तेभ्यो तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्टा तद्वद् इयं तदीय सरसीताम् नाशरयेत् कः कीरति। कर्मीभ्य शास्त्र कहते कर्मी भी परितो हरे हा। कर्मी भी परितो हरे हा। शास्त्र कहता है कि जितने भी कर्म कांडी हैं, जो अपने फल की इच्छा चाहते हैं कर्म के, उनमें से व्यक्तिम ययो ज्ञानिनस, उनमें एक जो ज्ञान में उन्नत है और जो जीवन के लक्ष्य को जानता है, प्रियतवया वो भगवान को प्रिय है। कर्मी सारे हैं, कर्मकांडी बहुत सारे हैं, उनमें से एक जो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है वो भगवान को प्रिय है। और ऐसे बहुत से ज्ञानी जो आगे बढ़ गए हैं और मुक्त हो गए, तेभ्यो ज्ञान विमुक्ता, वो ज्ञानियों में से जो मुक्त हो गया, ज्ञानी का उद्देश्य मुक्त होना, और मुक्त हो गया वो भक्ति को स्वीकार करेगा, भक्ति ही परमाह, वो भक्ति को परम कहेगा। और ये जब पढ़ रहे हैं तब आपको भगवत गीता के 18वें अध्याय का 54 श्लोक याद आना चाहिए, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मज भक्तिम लभते पराम। जब ज्ञानी मुक्त होता है, ब्रह्म के स्तर पे आता है, तब परा भक्ति को शुरू कर सकता है। ये सबसे महान है अभी तक जो कहे हैं। परंतु जिसने प्रेम को प्राप्त किया, कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया, वो तो इस आरंभ करने वाले से महान है। प्रेमई कनिष्ठा ततः, भक्ति में जो प्रेम की निष्ठा के ऊपर पहुंच गया वो उससे महान है। और इससे महान कौन है? जो भक्त प्रेम के प्रेम प्राप्त कर चुका है उससे महान कौन है? गोपी गोपियां, वो सब उन्नत भक्तों से महान है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप कृष्ण के ऊपर आश्रित है। और कौन कृष्ण? कौन सा? दिव्य गोपाल। ते भ्योता पशुपाल पंकज दृशस, पशुपाल गोपाल, पशुपाल पंकज दृशस, पंकज कमल। और गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। ताभ्यो अपिसा राधिका, उन गोपियों में राधिका सबसे श्रेष्ठ, भगवान को प्रिय है। फिर ऐसा कौन है जो राधा कुंड के ऊपर नहीं रहेगा? किसमें? अपने आध्यात्मिक शरीर में, अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपनी सिद्ध देह में, और अप्राकट भाव, अप्राकृत भाव, अप्राकृत भाव में रहेगा और भाव भक्ति के स्तर पर रहेगा और वहां सेवा करेगा। किसकी? राधा गोविंद की, जो वहां अपनी अष्ट काल लीला करते हैं। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, उसको अष्ट काल कहते हैं, 4 दिन के 4 रात के, 3 घंटे का एक, वहां उनकी अद्भुत लीलाएं हो रही है। इसका मतलब जो राधा कुंड के तट के ऊपर सेवा करेगा वो सबसे महान है, ये इस श्लोक का भाव है। और इस श्लोक में पहले है प्रेष्टा, प्रेष्टा का मतलब प्रिय, श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। पशुपाल पंकज दिशा, ये है गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं दूसरे स्तर पे। प्रेमई कनिष्ठ, ये है प्रेमी भक्त। और इससे नीचे जो है वो है ज्ञान मुक्त भक्ति परमाह, ये है भक्त। ये तो है सारे भक्ति की लिस्ट में। इससे नीचे है ज्ञानी, ज्ञानी से नीचे कर्म कर्मी, और कर्मी से नीचे विकर्मी, जो अभी तक कर्म में भी नहीं आया है। इसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर हमारे पास दूसरी स्लाइड में जो है सकाम कर्मी, उसमें से कर्मी और विकर्मी दो का विभाजन किया गया है। यहां अगर देखेंगे तो एक कर्मी है और एक विकर्मी है, ये सब सकाम कर्मी है, इसका मतलब कर्म कांडी है। कर्मी कौन है? जो पुण्य कार्य करते हैं, वेदों के निर्देश में कार्य करते हैं, वो विक्रमियों से महान है। ये भगवान की संतुष्टि के, विष्णु की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं, वो स्वर्ग आदि ऊपर पुण्य लोकों में जाते हैं, फिर वापस धरती पे आ जाते हैं, जैन उनके पुण्य समाप्त होते हैं। जब तक वो अपने फल को भोगने की इच्छा रखेंगे तब तक उनको शरीर धारण करना पड़ेगा भौतिक। और विकर्मी कौन है? जो पापात्मा है, जो अपवित्र कार्य करते हैं, शास्त्र का कोई मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, वो तो पशु योनियों में, पशु वृक्ष पर, इन योनियों में नीचे चले जाएंगे। साधु संत महात्मा इनका कोई महत्व नहीं देते हैं, ये भागवत का श्लोक 5.5.4 बताया गया है। मूर्ख ऐसे बहुत सी योजनाएं बनाते हैं सुखी होने की भौतिक जगत में, ये सब विकर्मी हैं। अब इसके बाद का स्लाइड आप देख लीजिए, कल इसको पढ़ेंगे, फिर दूसरे को भी पढ़ लेंगे। तीसरे इसके आगे जाइए, इसको ऊपर ऊपर कर लीजिए। भक्त, और यहां ये है भक्त है, उसके नीचे ज्ञानी है, उसके नीचे कर्मकांडी है, और उसके नीचे जो है वो क्या है, ये कर्मकांडी है और उसके नीचे कर्मी है। और जो कर्मकांडी है ये इसमें नहीं है शायद आपके, ये अंग्रेजी
तो
में
विकर्मी है, कर्मी, ज्ञानी, भक्ति, भक्त,
और ये तो हमने पढ़ लिया, वही है। एक और स्लाइड अंग्रेजी वाले में है, वो ऊपर भक्त है, नीचे ज्ञानी है, फिर कर्मकांडी है। उसमें कर्मकांडी का मतलब है जो वेदों के नेम से शुभ कर्म करते हैं, और उनसे नीचे कर्मी है, कर्मकांडी से नीचे कर्मी है। वो कर्मी कौन है? जो भौतिकवादी है, केवल अपने इंद्रियों के लिए काम करते हैं, शास्त्र का नियम नहीं पालन करते। अब है ज्ञान, ज्ञानी, यहां ज्ञानी लिखा है ना, हाँ ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो आत्मा के विज्ञान को जानता है, वो ये भी जानता है कि भौतिक भोग वाले कर्म भौतिक जगत में बंधन का कारण है, इसलिए वो फल वाले कामों से अपने आप को बचा लेता है, इसलिए वो कर्मियों से महान है। जब तक वो भक्ति के स्तर पे नहीं आएगा तब तक अभी भी उसके ज्ञान का कोई ज्यादा महत्व नहीं, अज्ञानी समझा जाएगा। अगर वो ज्ञानी भक्ति में आ जाएगा तो सामान्य ज्ञानी से महान हो जाएगा। अब भक्त क्या है इसके बाद? भक्त वो है जो भक्ति करता है भक्ति के नियमों के अंतर्गत, और फिर कोई भाव भक्ति के स्तर पे आ जाता है जब नारद, सनक, सनातन ऐसे भक्तों का, ये कौन सी भक्ति में आ जाएगा? ऊपर भाव भक्ति में आएगा, लेकिन कौन सा भाव है नारद का? वैदी भाव, ये वैदी भाव वाले नाम है नारद, सनक, सनातन, ये वैदी भाव वाले। और प्रेमी भक्त ये जो है राग मार्ग वाला है, जो आगे बढ़ेगा। और इसके बाद है गोपी, गोपियां, गोपियां सबसे महान है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा उनका और कोई काम नहीं, और कृष्ण से कुछ मांगती नहीं है, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते, कृष्ण को कभी नहीं भूलती, विपरलंबा सेवा करती है, जुदाई में सेवा करती है। 100 साल तक कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ के, फिर भी वो कृष्ण की स्मृति में सेवा करती रही, और इसको महान समझते हैं। साक्षात सेवा से विपरलंबा सेवा को महान समझते हैं। और चेतना महाप्रभु इस गोपी भाव को सबसे महान भाव कहा है, गोपी की उपासना सो महान उपासना। और फिर श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड, सब गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ, उसकी राधा रानी की कृष्ण प्रेम भक्ति से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, वो भक्ति नैपुण्य है। कृष्ण भी राधा रानी के प्रेम के भाव को नहीं समझ सकते, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और राधा रानी के भावों को समझना और उसका आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए जो कृष्ण भावना में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं उनको राधा कुंड का शरण लेना चाहिए, वहां भक्ति करनी चाहिए। वो इस विश्व में सबसे भाग्यशाली है जो राधा कुंड के तट पे रहते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ असल में हमारी स्लाइडें पूरी होती है, कल हम इसको पढ़ेंगे और 11वें श्लोक को भी पढ़ेंगे जिसमें राधा कुंड की विशेष महिमा लिखी हुई है। ठीक है, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु,
हरे
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरि बोल, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
कोई किसी का प्रश्न है? या दंडवत प्रभु जी, मैं गोपी गीता बात कर रही हूँ।
हाँ जी, गोपी गीत बोलिए।
प्रभु जी, हम जो वो स्लाइड्स पढ़ रहे थे उसके अंदर वो ज्ञानी, एक तो विकर्मी, कर्मी, देन कर्मी के ऊपर भी कर्मकांडी है।
हाँ, कर्मी से ऊपर कर्मकांडी है, राइट।
हाँ, तो ये कर्मी और कर्मकांडियों के बीच में यानी फिर वो अंतर क्या है?
कर्मी जो होता है, ये सामान्य लोग जो नौकरियां करते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये है कर्मी। और कर्मकांडी वो हैं जो शास्त्र के अनुसार मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन चाहते हैं स्वर्ग, पुत्र, धन, वो है कर्मकांडी। और कर्मी वो हैं जो न शास्त्र को जानते हैं, बस कमाते हैं और खाते हैं, वो है कर्मी।
ओके, तो फिर उसके नीचे जो कर्मियों के नीचे विकर्मी है, तो वो लोग
क्या? वो विक्रमी का मतलब है कि वो तो वो करते हैं घोर कर्म। घोर कर्म का मतलब है कि चोरी, डाका, बदमाशी, ये सब ऐसे काम करते हैं। सामान्य कर्मी है, नौकरी कर्मा के करके खाते हैं, लेकिन शास्त्र वास्त्र को नहीं जानते हैं, वो है सामान्य कर्मी। और विकर्मी है जो सारे उल्टे काम करते हैं, जो समाज में भी निंदित काम है वो करते हैं।
ओके,
हाँ जी।
और एक सवाल था प्रभु जी,
बोलो बोलो।
एक्चुअली इट्स अ फुल क्वेश्चन, बट फिर भी एक जिज्ञासा थी तो मुझे पूछना था।
हाँ जी, हाँ जी।
कि इतनी सारी गोपियां हैं और सब कृष्ण को प्रसन्न करने में लगी हुई है। आई एम जस्ट, ऑफ कोर्स दिस इज अ मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं ये जानना चाहती थी कि सारी गोपियां साथ में मिलके कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर सकती थी, यानी कभी कोई ये भावना नहीं होती थी कि वो अच्छा कर रही है या कृष्ण उससे ज्यादा प्रसन्न है या ऐसा?
ये बस ये भौतिक और आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। वहां कोऑपरेशन है और यहाँ कंपटीशन है, वहां सहयोग है और यहाँ प्रतिद्वंद है। असल में ये बात राधा रानी ने कृष्ण की रानियों को कहा था कि चंद्र एक है, चकोर तो अनगिनत है, सब चकोर चंद्र से प्रेम करते हैं, ऐसे कृष्ण चंद्र एक हैं। और ये गोपियां सारी अलग स्त्रियां नहीं है, ये राधा रानी का काया व्यू है। एक राधा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेक अवतार होते हैं ना, ऐसे राधा रानी अपनी काया व्यू, काया मतलब अपने शरीर को, एक को एक से अनेक गोपियां बनाती है, क्योंकि कृष्ण को रस विहार करने के लिए। इसलिए जो राधा रानी के मन में उत्पन्न होता है विचार, वही सब गोपियों के मन में होता है। एक के विपरीत दूसरे के मन में दूसरा विचार आता नहीं है। आप रासलीला में देखें, जब राधा रानी अकेली चली गई तो देखा कि सारी गोपियां दुखी है, तो राधा रानी कृष्ण से अलग होके अपने गोपियों के साथ वापस हो गई। तो वहां असल में को वो एक अनेक हो गई है, सिर्फ कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी,
थैंक यू सो मच।
हरे कृष्ण। और ये जो रानियां हैं, ये भी ये चेतना चरितमृत में कभी पढ़ेंगे तो लक्ष्मियां, रानियां और गोपियां, ये सब राधा रानी का विस्तार है। कोई उसकी छाया है, कोई उसका प्रतिबिंब है और कोई उसकी काया है। तो गोपियां हैं काया, तो ये सामान्य नहीं है, ये तो बहुत उत्तम स्तर के जो है अंतरंग बातें है। असल में वो जो आपने पुस्तक देखा था उस दिन, उसमें बहुत कुछ और लिखा है, हम तो थोड़ा सा संक्षेप में आपको दो तीन बातें बता दी, लेकिन उसमें राधा कुंड और राधा रानी की महिमा और अति लिखी हुई है। कुछ कल और पढ़ेंगे, कृष्ण कृपा करेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।
और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
प्रभु जी, जैसा हमने अलग अलग जगहों का महात्म्य देखा, जैसे गोवर्धन का महत्व कितना है, फिर उसके ऊपर राधा कुंड का महत्व कितना है, ऐसे कंसिडरिंग दैट इवन व्हेन वी कम टू लाइक डेटीज और प्लेसेस, हमारा एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन होता है. जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आती है तो हम लोग एकदम वही मूड में रहते हैं. फिर जन्माष्टमी आती है तो एकदम कृष्ण इन हिज 200 फॉर्म उनको पूजना चाहते हैं और पूरा मूड वैसा बना रहता है. तो जब हमको पता है कि सब एक ही है तो हम एक के ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. वैसे ही जगह के बारे में, जब हमें मालूम है कि ये जगह ये स्थली ज्यादा उत्तम है उससे, फिर भी कृष्ण से सब रिलेटेड है तो सारों का महत्व तो उतना ही होता है, फिर ये फर्क क्यों. दूसरा कि अब जैसे गोवर्धन अन्नकूट हो रहा था तो एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है टू प्लीज लॉर्ड इन द गोवर्धन धारी फॉर्म. फिर अब हमें जब पता होता है कि नहीं, राधा कुंड इज इवन हायर देन दैट, तो वी कांट कीप शिफ्टिंग. तो हाउ डू वी फाइंड आउट कि व्हाट इज द mood in which we should be serving the Lord and the place where we should be serving the Lord.
असल में क्या है कि हर एक के भाव अपने अपने होते हैं और भक्ति का स्तर हर एक का अपना अपना होता है. चाहे दूसरी जैसे जैसे हनुमान जी है वो राम की ही सेवा करना चाहते हैं, वो जाने भी सब कुछ के वृंदावन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, राम कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो राम जी की सेवा में ही संतुष्ट रहता है. ऐसे जो भक्त दास्य भाव के हैं वो मानो के वृंदावन में रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पांच भाव हैं. जो केवल सखा के हैं वो गोवर्धन तक जाने का साहस करेंगे और जो केवल माधुर्य के हैं वही राधा कुंड तक जाने का उनमें साहस आएगा. सभी वहाँ नहीं जा पाएंगे, जिनका भाव वात्सल्य वो भी वहाँ नहीं जाएंगे. तो जिसका जो जो भाव है उसके लिए वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है. अब हम जो हैं अभी कर रहे हैं साधन भक्ति, साधन भक्ति में हमारे को सभी वैरायटी दिखाई जाती है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. जब हमारा अपना स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तब हमको लगेगा कि हमारा भगवान से मानो सखा का भाव है. तो हमारे को कौन से सखा के साथ कौन से स्थान पर रहना है जहाँ कृष्ण उस सखा से बहुत संतुष्ट होता है, चाहे फिर कोई दूसरा उससे नीचे स्थान पर रह के खुश रह सकता है, कोई ऊपर रह के खुश रह सकता है, लेकिन हमारा जो भाव है वहीं हम उसमें संतुष्ट होकर वहीं रहेंगे. तो अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरली, अभी जब सुनेंगे बहुत अधिक भागवत सुनेंगे और हमारा हृदय पवित्र होगा तब हमारे हृदय में लगेगा कि ये भाव हमारे को अच्छा लग रहा है, हमारे को इस भाव में कृष्ण की भक्ति करनी है. तो फिर उस भाव वाला भक्त कौन से स्थान पे ज्यादा, अब देखो अष्ट आठ सखियों के अपने अपने गांव हैं. अब जो सखी भाव में मंजरी भाव में होगा तो उसी जगह में जाएगा जो हम वो सखी रहती है, चाहे भले राधा रानी सबसे महान है लेकिन वो उसका जगह वही है जहाँ जिससे उसका प्रेम है, जिसके अंदर उसको उसके जिसके अंतर्गत उसको कार्य करना है. तो अष्ट सखाओं के गाँव हैं, अष्ट सखियों के गाँव हैं. और ऐसे नंद बाबा का अपना स्थान है, जो वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं वो कहते हैं गोकुल में रहेंगे हम या नंदगांव में रहेंगे क्योंकि उनका भाव वो है, वो भाव तो राधा कुंड में उनका प्रकट होगा ही नहीं. तो ये अपना अपना जो भाव है उसको सिद्ध जिसने भाव किया है वो ही अपने जगह को चुनेगा. अब हम जो कर रहे हैं ये सामान्य एक प्रकार का भक्ति के सारे अंगों का सारे भावों का प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसका कौन सा भाव है जो जागृत हो जाए और उसको उसमें से चुन ले, उसमें उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाए.
ओके
हरे कृष्ण.
ठीक है प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच.
हरे कृष्ण.